बीबीसी इंडिया बोल तारीख 5 नवंबर दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत सरकार ने टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। वजह बताई, चैनल ने पठानकोट हमले के कवरेज के दौरान सामरिक रूप से संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित की। एनडीटीवी ने सरकार के इस आदेश को आपातकाल जैसा बताया, जब प्रेस की आजादी छीनी गई थी। क्या किसी समाचार चैनल या अखबार को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश देना मीडिया की आजादी पर सीधा हमला है? आज इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी। शामिल हो जाए कार्यक्रम में, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। आज समाजवादी पार्टी की रजत जयंती थी। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित समारोह में भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इस समारोह में अमर सिंह और आजम खान जैसे बड़े नेता शामिल नहीं हुए। राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव भी समारोह में मौजूद रहे। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस ने कथित तौर पर एक 16 साल के लड़के की शव यात्रा में आंसू गैस के गोले छोड़े और बंदूक के छर्रे चलाए। ये लड़का पुलिस की हिरासत में 2 दिन रहने के बाद बेहोशी की हालत में मिला था। इस भगदड़ में 12 लोग घायल हुए हैं। तुर्की में एक पुराने अखबार में काम करने वाले 9 पत्रकारों को आतंकवाद के आरोप में रिमांड पर भेजा गया है। इन्हें सोमवार को हिरासत में लिया गया था। इस बीच 9 और कुर्दिश समर्पित एचडीपी पार्टी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और 9 संसद सदस्यों को कुर्दिश गुरिल्ला गुट को समर्थन देने के आरोप में रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि उन सांसदों ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। दियारबकर के लोगों का कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तुर्की के निवासी ऐसेल सिमसेक का कहना है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब चुने गए नेता हैं, लाखों लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, उन्हें गिरफ्तार करना लोकतंत्र के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि देश में जंग छिड़ी है, लोग मुश्किल में हैं, उन्हें फौरन रिहा करना चाहिए। ये थे ऐसेल सिमसेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस में ड्रग के धंधे से ताल्लुक रखने के संबंध में हिरासत में लिए गए एक मेयर को पुलिस ने जेल में गोली मार दी। पुलिस का कहना था कि अल बेयूरा के मेयर रोनाल्डो एस्पिनोसा ने पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई थी। अधिकारी जेल की उनकी कोठरी में हथियार की तलाश कर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में मारे जाने वाले वो दूसरे मेयर हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे ने कहा है कि वो ड्रग व्यापार से संबंधित संदिग्ध लोगों को खत्म करना चाहते हैं। नाइजीरियन आर्मी का कहना है कि उन्होंने चिकबोक से 2 साल पहले अगवा एक स्कूली छात्रा को बोको हराम के कब्जे से छुड़वा लिया है। सेना के एक अधिकारी का कहना है कि ये लड़की बंधक बनाए गए उन लोगों में से एक है जो इस्लामिक चरमपंथियों से बचकर कैमरून की सीमा से लगे जंगलों से भागे थे। वो जंगल में सेना के छापे में अपने 10 महीने के बेटे के साथ पाई गई। ये उन 250 से ज्यादा स्कूली लड़कियों में से एक है जिन्हें 2014 में बोको हराम ने अपने कब्जे में लिया था। इराकी पुलिस का कहना है कि देश के उत्तरी इलाके से आईएस से बचकर भाग रहे 17 लोग सड़क किनारे बम धमाके में मारे गए। 2 धमाके उस ट्रक में हुए जिसमें आईएस के कब्जे वाले शहर हवीजा से भाग रहे परिवार शामिल थे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सरकार ने एनडीटीवी को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है और तर्क दिया है कि पठानकोट हमले के कवरेज के दौरान सामरिक रूप से संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित की गई। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी और साथ में टेलीफोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं। ओम थानवी साहब, सबसे पहले छोटी सी टिप्पणी आपसे यही लेना चाहूँगा कि इस कदम को कैसे देखते हैं? एनडीटीवी कह रहा है कि आपातकाल जैसी बात है।
देखिए, मेरा ख्याल है कि आपातकाल से भी ज़्यादा संगीन बात है, क्योंकि आपातकाल जो है वो घोषित किया जाता है। तो आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पर आयद होंगी सरकार की ओर से। अब चूंकि कोई घोषणा नहीं है और उसके बाद में अचानक आपको लगे कि आपकी जो अभिव्यक्ति है उस पर थोड़ा संकट है, और वो संकट इस किस्म का है, इस किस्म के आरोप का है जो बहुत ही संगीन आरोप है, यानी आतंकवाद और उसे जूझने के लिए सरकार, जो हमारी सरकार इतना कटिबद्ध है, उसमें देश का हर नागरिक और हर चैनल, हर अखबार जो है उसकी देशभक्ति पे आप संदेह नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चैनल को अलग करके, जैसे सरकार जो है वो नाखुश रहती आई है, लगभग साल भर बाद अचानक आप कहें कि आपने जनवरी में जो किया था वो ठीक नहीं था, ये एक तरह से उनकी देशभक्ति पर संदेह करना है, जो मैं मानता हूँ
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी हमला है।
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर तो है ही, क्योंकि आप लोगों को डरा देना चाहते हैं। अगर इस किस्म का आरोप लगाया जाए कि जो आपने किया उसे देश की सुरक्षा से समझौता हुआ, इससे संगीन आरोप आप किसी नागरिक पर या चैनल पर क्या लगा
सकते हैं? सीधे सुधांशु त्रिवेदी के पास चल रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, सरकार क्यों एक बार फिर से प्रेस की आज़ादी छीन रही है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपातकाल के खिलाफ रही है, प्रेस की आज़ादी की बात करते रहे हैं, तो सरकार अब वो काम क्यों कर रही है?
देखिए, यहाँ पर मैं जो अभी ओम थानवी जी ने कहा उससे थोड़ा मतभेद रखते हुए अपनी बात यह कहना चाहूंगा कि जिस समय इस चीज का प्रसारण हुआ तो सरकार ने तो 29 जनवरी को ही नोटिस दे दिया था। उदाहरण के लिए, जिस समय संवाददाता ये बोलता है कि आतंकवादी हथियारों के डिपो के बहुत नजदीक पहुंच गए, अब मान लीजिए उन आतंकवादियों को ना भी पता हो तो उनके हैंडलर से बता देंगे कि आप इसका मतलब उसके बहुत नजदीक है। दूसरा उदाहरण के लिए, अंदर MI6 है, MiG-21 है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, इस ढंग की संवेदनशील जानकारी यदि किसी कारण से आपके पास आई भी है तो इसको बोलना उचित नहीं था। सरकार ने इस विषय पे विधिवत जनवरी के अंत में ही नोटिस दे दिया, जुलाई तक बहुत सारा कई बार करेस्पॉन्डेंस हुई।
मेरे पास वो सुधांशु जी नोटिस मेरे सामने है जिसमें कि जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना कि दो चरमपंथी जिंदा है उसी जगह पर है जहां पर हथियार का डिपो है, ये संवाददाता जो है कह रहा है और उसी चीज का जिक्र कर रहा है। मेरे पास ये नोटिस भी है। सर, ये बताएं कि इस तरह तो सभी चैनल ये इसी तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे, और NDTV ने भी अपने जवाब में यही कहा कि लगभग सारी सूचनाएं सार्वजनिक थी।
नहीं, मैं इसमें यह भी बात आपसे कह रहा हूँ, जब आपने सभी से कहा तो मैं यह पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, क्या यह पहली बार हुआ है? UPA सरकार के शासनकाल में 21 बार चैनलों को ऑफ एयर किया गया है, और जिनको एक दिन से लेकर एक महीने तक किया गया है
इस आरोप में नहीं।
दूसरी बात, जहां तक NDTV की बात है तो NDTV के साथ यदि यह पहला वाकया होता तो बात दूसरी थी। मैं बता रहा हूं, NDTV को हमारे कार्यकाल में नहीं, 16 नवंबर 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार के टाइम में नोटिस गया है सेरेना विलियम्स की ऑफसीन फोटो दिखाने के बारे में। एक उनको गया है 1 जनवरी 2006 को एक विज्ञापन को आपत्तिजनक ढंग से दिखाने के सिलसिले में। गुवाहाटी की वायलेंस के बारे में उनको 5 सितंबर 2008 को यूपीए सरकार के शासनकाल में उनको नोटिस दिया गया। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो एक उनके यहां बंदरी सीरियल आता था जिसको लेकर 1 दिसंबर 2009 को सरकार ने नोटिस दिया था। ये सब यूपीए सरकार के साथ
जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम थानवी साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? एक मिनट,
देखिए सुधांशु जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि ये बहुत विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन मैं ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तो इसके लिए पहचानी जाती थी कि आज़ादी जो है अभिव्यक्ति की उसका गला हमेशा घोंटा। इमरजेंसी कांग्रेस की देन थी। आप कांग्रेस के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने सिनेमा पर, टीवी पर बहुत बैन लगाए। 50 साल तक उनको ख्याल नहीं आया कि लुई मॉल की फिल्म फैंटम इंडिया आज तक उस पर प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध है हमें नहीं मालूम, पर सवाल ये है कि कोई भी प्रतिबंध इस किस्म का नहीं लगा कि किसी भी अखबार या टीवी को कहा जाए कि आप देश की सुरक्षा से खेल रहे हैं। ये बहुत संगीन आरोप है। मेरा कहना यह है कि बाकी लाख आरोप एक तरफ, लेकिन ये आरोप जो है, इसलिए आप देखिए कि सारी पूरे देश में जिस किस्म की प्रतिक्रिया हो रही है, सरकार को सोचना चाहिए। भूल सरकार से भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना ये इसको लंबा खींचेंगे, भूल को नहीं मानेंगे, जिद पे रहेंगे, मेरा मानना यह है कि ये सरकार के स्तर पे जो है बहुत उचित नहीं होगा कि एक चैनल को जिससे कि आप खुश नहीं रहे हैं, अचानक आप उसको ये कहें कि वो देश की सुरक्षा के साथ में उसने खेल किया।
सुधांशु जी, पक्षपात क्यों कर रही है सरकार?
देखिए, यहाँ पक्षपात या कोई राग द्वेष का विषय नहीं है। पहली बात
दिखता तो यही है
जो मैंने कई सारे उदाहरण बताए, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से एनडीटीवी के लिए एक रिपीटेड अफेंडर वाली बात हो गई, यानी चेतावनियों पर चेतावनियां कई वर्षों से आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, इसलिए इस समय में वस्तु स्थिति डिफरेंट नजर आती है, कुछ भिन्न नजर आती है। दूसरी बात, ये जो सरकार ने निर्णय लिया है इस एक्ट की इस धारा के तहत एक महीने तक ऑफ एयर करने का प्रावधान है, यह आज तक के जितने भी चैनल्स के लिए किया गया है जिसमें इंटरटेनमेंट न्यूज सभी शामिल हैं उसका यह न्यूनतम है, यानी 24 घंटे तो एक प्रकार का प्रतीकात्मक है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, एक दिन का प्रतिबंध लगा के आपने, मतलब सिर्फ एक चेतावनी दी,
एक प्रतीकात्मक है ताकि यह एक संदेश जाए कि आगे से देखिए यदि लोकतंत्र में सबको अधिकार है तो उसके साथ साथ दायित्व भी है। अब कोई नेता ये कहे कि मैं चुन के आया हूं इसलिए मैं जनता का प्रतिनिधि हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं, आपको एक मर्यादा की सीमा में रहना है। क्या प्रधानमंत्रियों पे केस नहीं चले हमारे यहाँ? क्या उनको कटघरे में नहीं खड़ा होना पड़ा? तो
मतलब सरकार का आप ये कह रहे हैं कि सरकार का जो मुख्य मकसद है कि चैनलों को, समाचार माध्यमों को ये निर्देश देना है, उनके बारे में बता देना कि आपकी चेतावनी दे रहे हैं और आपकी सीमा ये है, इसके अंदर भीतर रहिए। मैं कार्यक्रम में यहाँ पर एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ। सुधांशु जी जाइएगा मत जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार पांडे इस समय आरा बिहार से बोल रहा
हूँ। आशुतोष जी कार्यक्रम में स्वागत है, सुधांशु त्रिवेदी है एक तरफ और दूसरी तरफ ओम थानवी है, अपनी बात रखिए आप।
आप तीनों को मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं सुधांशु जी, मैं जो बात कहूंगा सुधांशु जी को खराब लग सकता है, मैं एक छात्र हूं और प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी करता हूं
जी।
और पिछले 2.5 साल से एक भी बहाली क्लियर नहीं हुई है। इन तमाम मतलब ऐसी बातें मीडिया ना करे, एनडीटीवी के खिलाफ यही ये वो जो आरोप लगाया गया पठानकोट, उसके अंदर सारी भावनाएं छिपी हुई हैं कि वो क्यों दिखाता है एनडीटीवी कि 550 नौकरी प्रतिदिन खत्म हो रही है। मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि रेलवे के बारे में रवीश कुमार ने जो दिखाया था कि रेलवे में बहाली नहीं आ रही है, रेलवे की बहाली क्लियर नहीं हो रही है, उस पर उसके ब्यूरो प्रमुख प्रणय राय को रेलवे के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों ने
जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं आशुतोष जी, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर
आइए। मैं कह रहा हूं कि सरकार यह नहीं चाहती है, वर्तमान सरकार यह नहीं चाहती है कि समाचार चैनल आदमी के लिए जो सामान्य नागरिक है उनकी दिनचर्या उसकी समस्याओं पर बात करे, वो केवल सीमा पर तनाव संबंधी बात करे।
जी आप मर्यादा की बात कर रहे हैं जी जी,
वो सीमा पर तनाव संबंधी बात करे, वो अलौकिक सत्य कुछ बनाए और कुछ निर्माण करें जिससे समाज में बेरोजगारी पर बात ना हो।
जी हम जिस आशुतोष जी, आशुतोष जी हम जिस मुद्दे पर
जी बात का भी जवाब दे देते हैं
जी जी। आशुतोष जी, आशुतोष जी आप रुकिए, आशुतोष जी आप रुकिए, सुधांशु आपका जवाब दे रहे हैं जी।
देखिए आशुतोष जी ने यह बात कही कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मुख्य मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हैं उनको न उठाकर सीमा पर युद्धोन्माद संबंधी विषय को उठाना चाहती है, जिस प्रकार का आरोप है। तो मैं पुनः उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हुआ, ये बताइए सबसे पहला बयान किसका आया? अरविंद केजरीवाल जी का, जो अपनी पार्टी के प्रमुख है। दूसरा बयान आया राहुल गांधी जी का, जो कांग्रेस के व्यवहारिक दृष्टि से प्रमुख है। हमारे किसी प्रमुख नेता का बयान आया, सारी बयानबाजी उसके बाद शुरू हुई। तो आप सोचिए ना, दूसरी पार्टियों ने सर्वोच्च स्तर से यह बयान करके राजनीतिकरण उन्होंने किया। अब यह तो संभव नहीं है कि आप सर्वोच्च स्तर से प्रतिक्रिया देंगे और हम उसका जवाब भी नहीं देंगे।
आदित्य प्रताप सिंह हैं, इन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी की है, ये लिखते हैं कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एनडीटीवी को बंद करना अभिव्यक्त की आज़ादी पर हमला है। सुधांशु जी मुझे एक साफ बताइए कि ये अभिव्यक्त की आज़ादी पर हमला है या नहीं है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है कि नहीं है?
देखिए मैं इसमें बताता हूँ, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता
जो संविधान प्रदत्त है,
संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी स्वच्छंदता दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जहां तक हमारी सरकार और नेतृत्व का विषय है तो यह बात भी विनम्रता से कहना चाहूंगा, पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर सर्वाधिक दुष्प्रचार और आलोचना का सामना किया है तो भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े संगठनों ने किया, हमने उसको पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। और यदि किसी नेता का सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ है तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो अगर हम असहिष्णु होते तो हम उस जमाने में ही सत्ता में क्या क्या कुछ कुछ किए होते राज्यों में, हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि हमने दृढ़ता के साथ तथ्यों के साथ अपना विषय रखा और क्रमशः जनमत हमारे पक्ष में होता चला गया। इसलिए अगर आप हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वह इसके ठीक प्रतिकूल नजर आए।
वही तो बात है कि आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही तो बता रहा है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते रहे हैं और अब पासा थोड़ा पलट रहा है। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ मैं यहाँ कार्यक्रम में। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
सर मैं डिजिटल डेयरी कोसी डांस मधेपुरा बिहार से बोल रहा हूँ।
नाम नहीं सुन पाए, फिर से बताएं नाम।
मुकेश मधुकर बोल रहा हूँ।
हाँ मुकेश जी,
कोसी डांस मधेपुरा।
जी जी जी, राय रखें अपनी।
जी यहाँ पर तो एक शुरुआत सा नजर आ रहा है सर कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, मैं तो समझता हूँ ये कोशिश की जा रही है कि आगे आप लोग सचेत रहे, जितने भी मीडिया के ग्रुप सब हैं और जो भी चैनल है सब सचेत रहे, आगे आपकी बारी हो सकती है।
जी एक तरह की धमकी है ये जो हमारे श्रोता है मधेपुरा से, ये कह रहे हैं। सुधांशु जी मुझे मालूम है कि आप कहीं जा रहे हैं और बीच में कार्यक्रम में शामिल हुए, आखिरी टिप्पणी ले रहा हूं कि क्यों धमकी दे रही है सरकार।
देखिए जो लोग धमकी की बात कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा यह प्रावधान किस समय में बना, 2005 में। यह प्रावधान के बारे में सबसे अधिक चर्चा कब हुई, जब 26/11 का हमला हुआ और यह बात बिल्कुल आधिकारिक रूप से उभर के सामने आई कि जो टीवी पे प्रसारण हो रहा था और उसका सीधा सीधा लाभ आतंकवादियों ने लिया, तो उसके बाद यह विषय अत्यधिक संवेदनशील हो गया। अब मैंने पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं, यदि आपको ईश्वर ने शक्ति दी है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो तीनों स्तंभों की तरह चौथे स्तंभ को भी अपनी मर्यादा में रहना होगा और मर्यादा का
वरना ढा दिए जाएंगे।
स्वतंत्रता ना, मैं पुनः करूं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर समझिए। जिस प्रकार से किसी नेता को अधिकार नहीं है कि वह मर्यादा के बाहर जाए, किसी अफसर को अधिकार नहीं है, न्यायपालिका को भी अधिकार नहीं, उसी प्रकार से चौथे स्तंभ यदि हम मीडिया को केवल उसका स्मरण दिलाना।
लेकिन सवाल पूछना, ओम थानवी साहब आप भी हैं, सवाल पूछना तो मीडिया का दायित्व है। रवीश कुमार का कल पूरा कार्यक्रम आपने देखा होगा सुधांशु जी, सवाल पूछना तो मीडिया के लोगों का काम है, हमारा अधिकार है, उससे हमें क्यों छीन रहे हैं।
देखिए 40 वर्षों में कई बार कई मुकदमों में मैं अदालत में गया हूँ, हर बार होता ये है सरकार जो न्यायालय है वो ये देखता है कि आपकी नीयत इसमें कितनी ख़राब थी। तो गलतियाँ जो हैं वो मीडिया से हो सकती हैं, मीडिया से चूक हो सकती है, लेकिन मीडिया की नीयत पे अगर आपको संदेह है तो बुरी बात है, और आप नीयत पे संदेह नहीं बल्कि उसको मान करके और आप कार्रवाई कर दें उनके खिलाफ, ये ज्यादती है। इसलिए अदालतों की जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी मुकदमा, मुझे ख्याल नहीं पड़ता कि जब भी कभी अदालत की अवमानना तक का मुकदमा हुआ तो अंततः ये एक ही तर्क हमारे वकील दिया करते थे कि हमारी नीयत जो थी वो खराब नहीं थी, हमसे चूक हो सकती है।
मैं टिप्पणी ले लेता हूं, आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं। सुधांशु जी सरकार की नीयत साफ है कि नहीं।
देखिए ओम थानवी जी ने नीयत की बात कही, बहुत सही बात कही,
और इसी नीयत पर तो सवाल उठ रहा है।
नहीं नहीं मैं इसी पे आ रहा हूं, मैंने सरकार की तरफ से तो बहुत सारा स्पष्टीकरण दिया है
जी।
मैं एक बात थोड़ा इस विषय से अलग हटके कहूंगा, इसी संदर्भ में एनडीटीवी के मैंने पिछले 10 वर्षों के कई उदाहरण बताए और फिर नियत की बात कहता हूं तो इसको अन्यथा न लिया जाए। आपने एनडीटीवी पे एक नहीं बीसियों बार देखा होगा कि आतंक के आरोपियों के घरों पर किस प्रकार का कष्ट है, उसका कार्यक्रम देखा हो। आप बताइए एक उदाहरण कि जो लोग मारे गए थे संसद के हमले में उनके परिवारों ने मेडल लौटाए, या किसी सैनिक के जिसके सर काटे गए उसका जुड़ा हुआ कोई एक कार्यक्रम भी तो दिखा दीजिए। मैं इसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब नियत की बात आती है तो एक पत्रकार के रूप में मैं अनुरोध करूंगा कि उस नियत के बारे में भी देखें कि क्या न्याय संगत संतुलित था या एक पक्षी और एकांगी था।
सच को देखने के कई पहलू हो सकते हैं, ये हो सकता है कि सरकार को इस तरह से लगे, जैसे कि ये पठानकोट का मामला था जब मोदी जी ने पाकिस्तान के लोगों को आने की इजाज़त दी, बहुत से लोगों ने कहा कि ये अनुचित है और ये हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ है, लेकिन कई लोगों ने इसको एक डिप्लोमेसी का हिस्सा माना। तो सच को देखने के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन नियत का इस हद तक संदेह करना कि आप उनको सजा दें, कि आप पर्दे को काला कर दें, ये उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है, उनके अधिकारों पर है जो टीवी देखते हैं और जो हमारे देश में संविधान से जिनको हक मिला है कि वो देखने के हकदार हैं, उनका हक छीनना मैं मानता हूँ कि बड़ी चोट है
जी। जी
एक वाक्य आपने अच्छा कहा, फिर एक बात अंत में याद दिलाऊंगा, पर्दे को काला किसने करना शुरू किया था, किस चैनल ने पहली बार किसी भी घटना पे पर्दा काला किया था, और मैं आज से नहीं 2002 से जब से स्थापना से तक आज तक मैंने जितनी बातें बताई इसमें एक भी बार कभी दूसरे पक्ष की कोई चीज दिखाई हो। तो पत्रकारिता तो संतुलित होनी चाहिए ना, एकांगी एक पक्षीय नहीं होनी।
काली कमीज पहनना और बात है, काली पट्टी किसी की आंखों पे बांध देना दूसरी बात।
जी नहीं, पूरा का पूरा स्क्रीन ब्लैक करके
ये रवीश कुमार के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं,
वो अभिव्यक्ति थी।
देखिए फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो अभिव्यक्ति थी। कभी भी हमने वो दिए जलते देखे हो सैनिकों के लिए मारे जाने पे, कभी कोई दूसरा पक्ष भी देखा हो तो है वो विषय अलग है,
बहुत संगीन आरोप,
वो तो एक अलग प्रकार
लेकिन,
की बात
लेकिन,
है।
लेकिन जाते जाते मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस तरह के आरोप तमाम जो टीवी चैनल बीजेपी की नीतियों का समर्थन करेगा, क्या उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी या दूसरे ही पिसेंगे?
नहीं नहीं, हमने तो कभी किसी प्रकार का राग द्वेष का काम ही नहीं किया है भाई। अगर आप देखें तो हमारे खिलाफ तो किस किस प्रकार की बातें, किस किस प्रकार की भाषाएं बोली गई थी, वो सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। और आज भी जितनी शिद्दत के साथ हमारी पार्टी और मोदी जी को गाली पड़ती है, आप बताइए पूर्ववर्ती सरकारों में कब ऐसा रहा है? इतनी शिद्दत से, इतनी खुलेआम, इतने सार्वजनिक रूप से लोगों ने बोला है, इसमें मैं इस विचार को पूरी तरीके से नकारता हूं।
चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम में दिया और मुझे मालूम है कि आप की व्यस्तताएं मैं जानता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर कार्यक्रम में मैं शामिल कर रहा हूं एक श्रोता को और उसकी आवाज़ सुनता हूं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
मैं राजबली यादव बोल रहा हूं, गोंडा उत्तर प्रदेश से। सरकार ने निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला किया है और रवीश कुमार क्योंकि अपने कार्यक्रमों में हमेशा से सच को उजागर करते हैं, इनकी चर्चा नहीं करते हैं, इस वजह से ये प्रतिबंध लगा के पूरे मीडिया जगत को ये धमकी दी जा रही है कि यदि आप हमारी चर्चा नहीं करोगे तो इसी तरह से सबको प्रतिबंध लगाया जाएगा। मैं इसी को निंदा करता हूं सर। और अब तो वो चले गए भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं दूसरे,
लेकिन इस चीज का उन्होंने जवाब पहले ही दे दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओम थानवी साहब, एक बहुत पते की बात सुधांशु त्रिवेदी कह गए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि आप संवेदना लाइए अपनी पत्रकारिता में, उसको बैलेंस कीजिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, संतुलन जरूरी है।
देखिए लेकिन जिस संदर्भ में कहा गया है वो भरोसे लायक बात नहीं है। अविश्वसनीय बात इसलिए है कि सरकार ने पिछले 2.5 साल का ये पूरा उनका इतिहास बताता है कि उन पत्रकारों को नवाजा है जो बहुत खराब पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जेल काट के आ गए तिहाड़ में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग करके, उनको उन्होंने सरकारी सुरक्षा दी है। तो और अब आप उस चैनल को जो हर कोई जानता है, आम जनता जानती है कि सरकार के खिलाफ बोलने का साहस बहुत थोड़े लोगों में है, जिनमें भी है उनमें एक जो चैनल है उस चैनल को आज आपने लगभग साल भर बाद में शिकंजा ऐसा कसा है कि आप तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे।
लेकिन चैनलों को भी कुछ प्रतिबंध, कुछ मर्यादा में तो रहना चाहिए ना।
निश्चय ही ये बात सिद्धांत के तौर पे तो हमेशा, एक बात जो सुधांशु जी ने कही, ये तो पत्रकारिता क्या आज़ादी के सिद्धांतों में है कि आपकी आज़ादी दूसरे की आज़ादी पर खतरा नहीं बननी चाहिए। आपकी आज़ादी है लेकिन उसके साथ में आपकी आज़ादी जो है वो दायित्व भी लेकर के आती है, वो बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी आड़ में सरकार, जो सरकार ने चैनल के खिलाफ किया है, जो जनता समझ रही है, जो फोन आपके आ रहे हैं, जनता के फोन आ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है कि ये बाकी सबको इशारा है। देखिए विधायिका, इसमें लोग अफसर डरे हुए हैं, सरकार जो है बिल्कुल आपको ऐसे मंत्री मिले हुए हैं जिनके चेहरे नहीं आप पहचान सकते हैं। तो दो चीजें बची हुई थी, एक तो न्यायपालिका और एक पत्रकारिता। अब इन दोनों को दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। न्यायपालिका में देश का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सरेआम रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, और अब आपका शिकंजा जो है वो मीडिया पर है। आज जो लोग बोल रहे हैं मीडिया में, एक स्वर से जो बोले हैं इसलिए बोले कि उनको पता है कि आज उंगली एक चैनल पर है, कल हमारी तरफ भी उठेगी,
उनकी भी बारी
और उठना जरूरी है।
एक श्रोता को शामिल कर लेता हूँ। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी बजरंगलाल शर्मा, राजस्थान, श्री माधोपुर जिला सीकर से बोल रहा था।
जी बजरंगलाल जी,
जी मैं सर ये कहना चाह रहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक और संवेदनशील सूचनाओं को यदि लाइव टेलीकास्ट कोई करता है या सूचना ही को जो है प्रत्यक्षीकरण करता है, तो उस टीवी चैनल के लिए एक प्रतीकात्मक तरीके से यदि 24 घंटा के लिए सरकार अपनी गाइडलाइन दे करके उसको यदि मर्यादित तरीके से यदि कहती है, तो इसके अंदर अभिव्यक्ति की आजादी का कहां से तात्पर्य बन जाता है?
ओम थानवी जी, जी
नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है।
जी जो कह रहे हैं,
अगर ऐसा सच में हो, आप जो कह रहे हैं वो आरोप सरकार का आरोप है, सच्चाई ये है कि जो बात उस चैनल ने कही वो और चैनल भी कह रहे थे, और कोई भी चैनल मतलब इस चैनल के बारे में नहीं और भी देश के चैनल उनके बारे में भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो देश के हितों के खिलाफ काम करते हैं। तो कहीं पे चूक होती हो तो उनको चेतावनी दी जा सकती है, सजा तब दी जाती है, तब अपराध आप सचमुच मानते हो कि अपराध हो गया है। अपराध चूक एक अलग होती है, अपराध अलग होता है। मैं नहीं मानता हूँ कि किसी की नीयत किसी भी चैनल की इस हद तक थी कि वो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा हो। कई चैनलों ने वही बात कही है, एक चैनल को अलग करने का मतलब साफ है कि वो चैनल सरकार के आंख की किरकिरी था, उसे सबक सिखाया जा रहा है।
मेरे साथ मेरे सामने जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का वो जो ऑर्डर है उसमें एक बयान है जिसमें कि लिखा गया है और एंकर या जो संवाददाता है ये कह रहे हैं, आपको बता दें कि वहाँ के टेक्निकल एरिया में MiG-21 हेलीकॉप्टर, MI-35, MI-25 और फ्यूल टैंक हैं, यानी कि जगह का विवरण दे रहे हैं। तो ये तो संवेदनशील मतलब जानकारियाँ हैं और इसका सीधा प्रसारण करना तो कहीं से जायज़ नहीं है। तो सरकार ने जो ये ऑर्डर पास किया इसमें तो दम दिख रहा है।
देखिए ऐसा है कि ये सरकार ने एक चैनल के बारे में कहा है, अभी आपको बहुत जल्दी आने वाले दिनों में बाकी चैनलों ने क्या कहा था ये भी पता चल जाएगा, तब मालूम चलेगा कि एक चैनल को
आपका ये कहना है कि ये पक्षपातपूर्ण है।
पक्षपातपूर्ण है। दूसरी बात मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि चूक हुई हो सकती है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन, अगर आपकी नीयत, आपका मकसद जो है वो नहीं है जिसका आरोप लगाया जा रहा है, तो आप चेतावनी दीजिए, दीक्षा दीजिए, प्रशिक्षण कीजिए पत्रकारों का कि किस तरह से ऐसे मामलों में उनको दीक्षा दें, लेकिन उनको आप गुनहगार समझा के सजा मत दीजिए, गुनहगार ठहरा कर।
एक कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर लेता हूं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हेलो, हाँ जी, मेरा नाम रोहित कौरव है।
रोहित जी अपनी बात रखिए।
जी ये जो घटनाक्रम चल रहा है सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है सर। ये मतलब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जवाबदेहिता पर अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो उसको ये एक अपने ऊपर एक आरोप की तरह ले रही है सरकार सर, जो कि ठीक नहीं है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक और श्रोता को मैं यहीं पर शामिल करना चाहता हूं लेकिन वक्त कम है मेरे पास। ओम थानवी जी, घूम के मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि सरकार का कहना साफ है ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं है, ये एक गाइडलाइंस की बात है कि आप ऐसी संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित ना करें। तो इसको अगर पत्रकार जो कम्युनिटी है अपने ऊपर हमला क्यों मान रही है, हमला नहीं मानना चाहिए।
अगर सरकार की नीयत किसी भी चैनल से बदला लेने की नहीं होती तो सरकार को ये करना चाहिए था, और साल भर नहीं, ये जनवरी की बात है, फरवरी में भी कर सकते थे कि इस तरह से एक चैनल ने ऐसा किया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि कई चैनलों ने किया था, तो उन चैनलों का जिक्र करते हुए सारे चैनलों को समझाया जाना चाहिए था कि देखिए आपकी नीयत ये नहीं रही होगी, लेकिन जो कुछ जिस तरह से रिपोर्ट हुआ उससे ये खतरा देश की सुरक्षा पे आंच ला सकता है, तो ये एक समझदारी का काम होता। साल भर, एक साल में जितना पानी बह गया, जितना इस सरकार और इस चैनल के बीच में तकरार हो गई और अचानक उस चैनल को बंद करते हैं तो फिर सरकार की अपनी नीयत जो है वो संदेह के घेरे में आ जाती है और किए कराए पर पानी फिर जाता है।
रुकमान फरीदी हैं, एक फेसबुक पर इन्होंने टिप्पणी की है कि क्या सरकार उन सभी चैनलों, पत्र पत्रिकाओं और पठानकोट एयरबेस का दौरा करने वाली टीम पर भी कार्रवाई करेगी, मतलब जो लोग वहां पर गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो क्या सरकार का अगला लक्ष्य ये हो सकता है?
बिल्कुल, पाकिस्तान के ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जांच करने के लिए पाकिस्तान के ISI के लोग यहाँ आए और उस जगह पे गए जहाँ पे आप हमारे पत्रकारों को कह रहे हैं कि आपने वहाँ जाके वो जानकारी दी, तो वो जानकारी क्या वो जो लोग आए थे नहीं लेकर के गए हैं, उनको दाखिल कैसे होने दिया?
लेकिन अंतर है ओम थानवी साहब, अंतर ये है कि जब एक ऑपरेशन चल रहा हो, जब एक लाइव ऑपरेशन चल रहा हो, उस समय कम से कम मुंबई अटैक में हमने देखा और इस बात की काफ़ी रिपोर्टें आई कि जो जो चीज़ें थीं वो जो लोग थे वो अपने टच में थे और उसी तरह अटैक होते रहे।
मैं मानता हूं कि इस मामले में सजग रहना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस मामले में चूक हुई हो सकती है और हमारे पत्रकारों को इसमें दीक्षित करने की ज़रूरत है कि कानून क्या है, देश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से जिम्मेदारी से पत्रकारिता की जाए। लेकिन
तो चैनल अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे?
चैनल को जिम्मेदारी समझ,
या फिर टबलाइट है, पत्र पत्रिकाएं अपनी जिम्मेदारी भी समझे,
चैनल को समझाने
और संतुलित रहे।
चैनल को जिम्मेदारी समझाने का तरीका ही तो नहीं है ना, एक चैनल को अलग करके अगर आप करेंगे तो सारे देश में सरकार की अपनी भद्दपीटेगी जो हो रहा है और वो मकसद नहीं हासिल हो रहा है। जो सरकार का अगर मकसद सचमुच अपने ही देश के चैनलों को अगर ये मानते हुए कि वो देश के खिलाफ नहीं है तो उनको भरोसे में लेके और उनको दीक्षित किया जा सकता है, वो सरकार ने कभी नहीं किया साल भर में।
बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानवी साहब। और कार्यक्रम में अब मुख्य समाचारों का वक्त नहीं है, गर्मा गर्म बहस हुई। उन तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो कार्यक्रम में शामिल हो पाए और उन सब से माफी जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।